स्पृष्टम स्पर्श करने पर, शेषना शिर से, मैं मेरा, भवत आपका, शिवम कल्याणकारी। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवान स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो सके, क्योंकि जिन लोगों ने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं किया उन्हें आपके दर्शन दुर्लभ है। मैं आपके चरणों की धूलि को शिर से स्पर्श करके और भी कृतकृत्य हुआ हूं। तात्पर्य, दिव्य जीवन की पूर्णता पवित्र पुरुष के चरणम कमलों की पवित्र धूल का स्पर्श करके प्राप्त की जा सकती है। भागवत में कहा गया है, महत पाद रजोभिषेकम, अर्थात महत अथवा महान भक्त के चरणों की पवित्र धूल से अभिषेक। जैसा कि भगवद गीता में उल्लेख है, महात्मानस्तु, महान पुरुष आत्मिक शक्ति के वश में रहते हैं और उनका लक्षण यह है कि वे कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से लीन रहते हैं, इसीलिए महत कहलाते। जब तक महात्मा के चरण की धूल का अपने शरीर पर चढ़ा नहीं लेता तब तक आत्मा जीवन में सिद्धि मिलने की कोई संभावना नहीं रहती। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलम्, श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं, सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां, सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे, वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेशगोपिकाकान्तराधाकान्त नमोऽस्तुते। रक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राब्दि पीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दिक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिद्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित। असाधु साधु नादाय नाति नीचोत तारक, हानमुंच कदाचिन्मा प्रेम्णा हृत्कंठयो स्फुरः। ये कल का है ना? इतना फ्रेश ना? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम उसको थोड़ा तो ज़्यादा भी रख सकते, पता नहीं क्यों उसको वॉल्यूम का प्रॉब्लम है। दिष्टा में भगवान दृष्ट दुर्दर्श यो अकृतात्मना दिष्टा पादरजस्पृष्टम श्रृष्णा में भवत शिवम। स्वयंभू मनु और कर्दमुनि संवाद में एक बार पुनः यहाँ आज कल का श्लोक से आगे हम चर्चा करेंगे, जहाँ पर स्वयंभू मनु कर्दमुनि को संबोधित करते हुए प्रमुख रूप से साधु संघ की महिमा के विषय में बतला रहे हैं। तो कल भी हम कल जहाँ विराम दिए थे, तव संदर्शनाद एव छिन्ना मे सर्व संशया यत् स्वयं भगवान प्रीत्या धर्मम आहरिरीक्षसो। तो मेरे वास्तविक धर्म का उपदेश आपने जो दिया, जिसको मैं अति श्रद्धापूर्वक जब श्रवण किया, तो उसका फल स्वरूप मेरे समस्त संशय जितने भ्रम थे वह सब नष्ट हुए। तो एक शुद्ध भक्त की जब वास्तविक संगति प्रकृष्ट रूप से ली जाए, जिसको कपिल मुनि कहे प्रसंग प्रकृष्ट रूपेण संग प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदु स एव साधु सुकृत मोक्ष द्वारम अपावृतम। इस संसारिक लोगों की संगति जो बंधन का कारण है, संसार में जो तीन गुणों से प्रभावित समस्त जीव है, उनका जितना अधिक संग करते उतना अधिक वह बंधन को वर्धन करता है। इसलिए शास्त्र में पुनः पुनः जो भी आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि प्राप्त करना चाहे उसके लिए कहा गया कि वह सदैव अपने आप को असत संगति से बचा कर रखे। यहां पर हालांकि सत्संगति की महिमा है, परंतु सत्संगति की महिमा जितनी है, कई आचार्य का यहां कथन है कि सत्संग की महिमा से अधिक असत्संग की महिमा है। सत्संग जितना शक्तिशाली होता है, साधु संगति जितनी शक्तिशाली है, उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली असत्संगति होती है। असाधु की संगति उससे अधिक प्रभावशाली होती है। जिस तरह से इसको हम पूर्व भी स्मरण किए कि यदि कोई साधु की संगति करता है प्रकृष्ट रूप से, अच्छी तरह से यदि साधु की संगति करें, कितना तो बतला जाता है कि यदि आप 100 दिनों तक साधु की संगति करते हैं अच्छी तरह से, नित्य प्रति साधु की संगति में रहते हैं और 1 मिनट के लिए असत संगति कर दें, तो 1 मिनट की असत संगति 100 दिन के सत्संग को पूरा निष्फल कर देती है। तो इसका अर्थ मन में यह प्रश्न आता है कि असत संगति अधिक शक्तिशाली वास्तविक है। वास्तविक असत संगति शक्तिशाली इसलिए हो जाती क्योंकि हमारे अंदर असत प्रवृत्ति अधिक है या असाधु प्रवृत्ति। जैसे कहा जाता अंग्रेजी, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, समान स्वभाव वाले जल्दी आकर्षित हो जाते, समान गुण वाले जो है वो तुरंत खींच लेते हैं, जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है। चुंबक अन्य किसी पदार्थ को नहीं खींचेगा, परंतु लोहा जो समान स्वभाव वाला है उसको तुरंत अपने आकर्षित करता है। तो हमारे अंदर बद्ध अवस्था में असाधु प्रवृत्ति बहुत अधिक है, क्योंकि असंख्य जन्मों की असाधुता का स्वभाव भरा हुआ है। साधु तो अभी अभी बने हैं, अभी अभी माथेर तिलक गलेर माला आया है, परंतु ऐसा नहीं, बहुत जन्मों का स्वभाव है। तो बहुत जन्मों का असाधु स्वभाव रहता है, तो किंचित मात्र असाधुता मिल जाए हमें तो उसको तुरंत पकड़ लिया जाता है, हम तुरंत उसको ग्रहण कर लेते हैं। जबकि सत्संगति पकड़ में नहीं आती है बहुत अधिक, ये जो मलिन मन होता है, इसलिए आध्यात्मिक नाम, आध्यात्मिक रूप, आध्यात्मिक विषय यह मन में ठहर नहीं पाते हैं, परंतु असाधुता बहुत जल्दी पकड़ लेती है। तो इसीलिए हम आते प्रतिदिन नियमित भागवत का श्रवण कर रहे हैं, नाम जप करते हैं, तो कुछ काल के लिए हम साधु संगति करते हैं, कुछ एक घंटे के लिए बैठ जाते हैं, कुछ डेढ़ दो घंटे के लिए, डेढ़ दो तीन घंटे के लिए नाम जप करते हैं, परंतु वह जितना महत्वपूर्ण, उससे अधिक महत्वपूर्ण उसके उपरांत हम क्या करते हैं, जो आध्यात्मिक जो क्रिया की उसके बाद जितना जो काल है उस काल में क्या करते हैं। जिससे ऐसे मैं इस लीला को स्मरण कर रहा था, भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन विहार किए तो वहां पर एक प्रमुख लीला का वर्णन किया गया, चीरहरण लीला। अभी तीन दिन है ना, कितना, चार दिन पश्चात पूर्णिमा आने वाली, अभी एकादशी कल है, फिर उसके पांच दिन पश्चात, जिसे कात्यायनी व्रत समापन कहते हैं। तो वहां पर भी हम वर्णन सुने कि चीरहरण लीला में जो प्रमुख एक भाव को आचार्यगण बतला है कि भगवान श्री कृष्ण, गोपियों ने कामना की कि श्री कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो, नंद गोप सुतम देवी पति में कृते नमः। तो उस समय वहां वर्णन किया जाता है कि एक महीने तक बहुत कठोर व्रत किया उन्होंने, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यमुना स्नान करना, फिर भविष्य अन्न को ग्रहण करना। हमारे वक्त प्रयास किए थे कुछ पांच दिन अगले विष्णु पंचक में, तो पहले तो भविष्य अन्न बनाना शुरुआत में जमा नहीं, और फिर साहस हुआ नहीं भक्तों का, और मतलब मिर्च नहीं, मसाला नहीं, एकदम बहुत ही एकदम तपस्वी भोजन होता है। परंतु यह गोपियों ने जो व्रज कुमारिकाएं थी, बहुत ही कम उम्र आयु की थी, लगभग चार पांच वर्ष की, तो उस चार पांच वर्ष की उम्र में उन्होंने कठोर तपस्या की, फलस्वरूप अंततः भगवान उनकी कामना को पूर्ति करने के लिए पूर्णिमा के दिवस में प्रातः काल जब वे यमुना नदी में स्नान कर रही थी, श्री कृष्ण वहां पर आए और अंततः समस्त गोपियों के वस्त्रों का हरण कर लिए। तो अंततः फिर एक एक कृष्ण एक एक गोपी को बुलाते, कृपया अपने हाथों को जोड़कर और ऊपर की ओर इस तरह से ऊपर हाथ जोड़कर इस तरह से एक एक सामने आओ, क्षमा याचना करो, तो मैं एक एक गोपियों के वस्त्र जो है वह दे दूंगा। तो बाह्य रूप से ये थोड़ा भौतिक दृष्टि से देखा जाए अनैतिक क्रिया लगती, परंतु श्री कृष्ण की विशेष लीला है। तो इसमें आचार्य कुछ भावों को बताए, तो वहां पर एक प्रमुख भाव यह भी बतलाया गया है कि वास्तविक देखा जाए तो श्री कृष्ण के सामने कुछ आवरण है ही नहीं, इस संसार में ऐसा कुछ विषय है नहीं जो कृष्ण से छुपाए जा सके। भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं भगवद गीता में कहते, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च। हम जो क्रियाएं करते हैं, जो नहीं करते, जो विचार करते हैं, समस्त वस्तुओं के, समस्त परिस्थितियों के, समस्त कार्यों के भगवान साक्षी है। यहां तक कि हम क्या करने वाले वह भी भगवान जानते हैं। तो इस संसार में ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए भगवान का को जब संबोधित किया गया श्रीमद् भागवत में, तो सबसे पहला भगवान का नाम है अभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब जो समस्त विषय को अच्छी तरह से जानते हैं। तो भगवान से छुप तो कुछ सकता नहीं है, भगवान से कुछ हम आवृत नहीं कर सकते, भगवान से छिपा नहीं सकते, परंतु जीव में यह प्रवृत्ति होती है कि भगवान से छुपा कर रखता है, तो उस प्रवृत्ति को नाश करने के लिए यह लीला बताई गई है, चिरहरण लीला, जिसमें पूर्णतः से आचरित आवरण भंग लीला, जो आवरण है जीव और भगवान के बीच में जो आवरण रहता है, जो कवरिंग रहती है, तो उस आवरण को भगवान नष्ट करना चाहते, तब वास्तव भगवान के रास में प्रवेश होता है, जो समस्त आवरणों का छेदन कर दे। तो अन्य शब्दों में भगवान कितना हम भगवान के सामने दिखा रहे हैं, जितना अंग जो दिख रहा था वह तो भगवान देख रहे थे, परंतु जो अंग छुपा था वह भी भगवान देखना चाहते थे। तो उसी प्रकार से भक्त भगवान को कुछ अर्पित करता है, तो वो जितना अर्पित करता है उसे देखकर, उसकी उस भाव को देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु भगवान अधिक प्रसन्न होते जितना अर्पित नहीं किया उसे देखकर, समझ में? मतलब जितना आपने भगवान को दिया वह तो भगवान देख ही रहे, परंतु कितना पीछे छुपा कर रखा है वह भी भगवान देखते हैं, और भगवान चाहते जो छुपा कर रखा है वह भी अर्पित करें। तो अन्य शब्दों में भगवान जब कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, कि सब कुछ पूर्णतः से मुझे समर्पित करो, तो यह भगवान की कामना रहती है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्लूसिव सरेंडर। भगवान ये कामना करते हैं कि यह पूर्ण शरणागति जीव ग्रहण करे, और जब तक पूर्ण शरणागति न हो तब तक जीव का भी कल्याण नहीं है, भगवान भी पूर्णतः संतुष्ट नहीं होंगे। तो इसीलिए वहां पर बतलाया कि भगवान यह देखना चाहते कि हम भगवान के लिए कुछ समय तो देते हैं, तो मूल बात यह हमें बतलाना चाहता है, कुछ समय हम देते भगवान के लिए प्रातः काल, क्रमशः जो भक्ति मार्ग में आ जाते हैं, साधु गुरु से प्रेरणा प्राप्त करते, तो कुछ समय धीरे धीरे निकालते हैं। एक समय था कि जब कहा जाए कि आपको एक दो घंटा भगवान नाम का जप करना है, प्रतिदिन नियमित मंदिर में आके एक दो घंटा भागवत को सुनना है, तो प्रारंभिक अवस्था में लगभग असंभव लगता, इतना समय भगवान के लिए, ऐसा लगता था कि बहुत अधिक है, परंतु क्रमशः अब नियमित अभ्यास के बाद यह एक दैनंदिन जीवन का अंग बन गया है। परंतु आगे चलकर कहा जाए कि प्रतिक्षण भगवान के लिए दिया जाए, जिस तरह से शौनकादि ऋषि से जब पूछा गया, शौनकादि ऋषि सुध गोस्वामी को जिज्ञासा किए कि कृपया हमें भागवत कथा सुनाइए, श्री कृष्ण के अवतरण की लीला है, समस्त अवतारों की लीला सुनाइए। तो सुध गोस्वामी पहले एकदम ऐसा टाइमर लगा के बैठे थे, कितना टाइम है तुम्हारे पास, पूछा उन्होंने, कितना समय है बताओ, उतना देर का प्रवचन दूंगा। तो वहां क्या कहते हैं, कलिम आगतम आज्ञाय क्षेत्रस्मिन वैष्णवे वयम आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा हरे। कितना टाइम कहा उन्होंने कि कलिम आगतम आज्ञाय, ये कलियुग आ चुका है, क्षेत्रे अस्मिन वैष्णवम, तो हम सभी वैष्णव यहां पर उपस्थित हैं, कितने समय के लिए बैठेंगे हम यहां पर, 9 बजे तक है। आसीना मतलब हम बैठ गए हैं, दीर्घ सत्रेण, दीर्घ सत्र मतलब लंबे समय के लिए, कुछ घाई नहीं है हमको, घाई गड़बड़ का काम नहीं है। कितना समय, कथा या हम कथा के लिए सक्षणा हरे, हमारे जीवन का हर क्षण केवल कथा के लिए ही है, आप बस कहते रहिए, आप जितना कहना चाहते कहते रहिए, हमारे पास बस पूरी जीवन जो हमने उसके लिए ही बचा कर रखा है। तो इस तरह का मतलब जो यह पात्रता बताई गई है वहां पर, कौन कथा सुनना चाहता है, कथा का लाभ कब प्राप्त होता है, जो शौनक जैसा श्रोता कोई बन जाए, शौनक आदि ऋषि जैसा। तो हम कुछ समय कुछ काल तो देते हैं भगवत भक्ति के लिए, सत्संग के लिए, आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए, परंतु उसके उपरांत जो समय है उस पर भगवान की नजर रहती है, जिस तरह से गोपियों ने जो छुपा कर रखा था उस पर भगवान की नजर थी, तो वैसे ही हम जितना समय जो भगवान से आवरण करके रखे, मतलब भगवान से अलग करके रखा है, उस क्षण में हम क्या क्रिया करते हैं उस पर भगवान का अधिक ध्यान रहता है। तो सत्संग हम करते हैं, सत्संग की महिमा है, परंतु उसके उपरांत जितना समय असत क्रियाओं में जाता है, असत संगति में जाता है, वह अधिक प्रभावित करता है। तो यहां पर जो सत्संग के विषय में कहा जा रहा है, तो मन में प्रश्न आता है कि हम सदैव सुनते रहते हैं, जैसे यहां पर कहा गया तव संदर्शनाद एव छिन्नामय सर्व संशय, कि आपका संगति इन समस्त मोह को, समस्त भ्रम को, समस्त दोष का नाश कर देती है। यह भगवत भक्त की संगति का लाभ तो हम सुनते हैं, परंतु प्रश्न ये उठता है कि हम तो सत्संगति तो इतने दिनों से कर रहे हैं, कितने संशय नष्ट हुए हमारे, कितने दोष गए हमारे। तो फिर दो ही प्रश्न है, जो संग कर रहे हो सही में सत्संगति है क्या, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि क्या हम सही तरह से सत्संगति कर रहे हैं क्या। ये दो ही क्रियाएं में दोष हो सकता है। सत्संगति जो महिमा यहां पर भी कही जा रही, जैसे इस तरह से यहां पर दिष्ट्या में भगवान दृष्टो अदृष्ट यह अकृत आत्मनाम, यह सत्संगति की जो महिमा की बहुत ही दुर्लभ है। यहां तक कहा जाए कि एक बार भगवत प्राप्ति सहज है, परंतु भगवत भक्त की प्राप्ति सहज नहीं है, उससे अधिक दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत में इसीलिए देखा जाता है कि समस्त भक्त भगवान का भजन किए और अंततः भगवान का दर्शन भी किए, भगवान को प्राप्त कर लिए, परंतु भगवान को प्राप्त करके भगवान का दर्शन कर लिया। आप कल्पना कीजिए, साक्षात भगवान यदि आपको दर्शन दे, दयाल गौरांग प्रभु, क्या मांगेंगे आप? कुछ लिस्ट वगैरह तैयार है क्या आपके पास? भगवान स्वयं आ जाए आपके सामने, प्रसन्न हो गए, दयाल गौरांग प्रभु श्री क्षेत्र परिक्रमा करके आए, तो भगवान जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न कि जगन्नाथ जी जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकल के प्रकट हो गए उनके सामने। कल्पना करने में जाता क्या है, कभी कभी कल्पना कर ली। कल एक किसी ने मैसेज भेजा था ना, अच्छी कथा लगी, कहते कि वो किसी शिष्य ने पूछ लिया गुरु जी को, गुरु जी भगवान का नाम ले रहा हूं, भगवान का भजन कर रहा हूं, परंतु रोना नहीं आ रहा है, तो क्या करो? तो बोले रोने का नाटक ही करते रहो, जान पूछ के रो। कभी कभी भक्ति बोले नाटक में भी करो, तो कभी कभी क्या होता है, आप मजाक मजाक में जो करते हैं वो कभी गंभीरता से हो जाता है। तो इस संसार में आप देखते हो कुछ ड्रामा करते हो, ड्रामा की असलियत हो जाता है, ऐसा कभी देखा क्या? ये काफी निकृष्ट उदाहरण है, परंतु संसारी उदाहरण देखा जाता है कि आजकल सिनेमा में जो भी कलाकार होते हैं, नट नट और नटी होती है, नायक और नायिका होती है, वो अभिनय करते करते वास्तविक हो भी जाता है उनका कभी कभी, इस तरह अफेयर आदि। तो भगवान के साथ भी संबंध का यदि नाटक कर लिया जाए तो कभी कभी हो जाएगा। तो यदि कल्पना कीजिए, यदि आपके समक्ष भगवान प्रकट हो, तो क्या तैयारी आपकी, क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे कि नहीं, कि बोलती बंद हो जाएंगे? अधिकांश हम इस संसार की वस्तु मांगते हैं, परंतु जितने भक्तों ने भगवान का दर्शन किया उन्होंने एक ही कामना केवल की है, और वह है कि वह हमें नित्य साधु की संगति प्राप्त हो। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद में आप देखेंगे परीक्षित महाराज क्या कहें, जो प्रारंभिक लाइन आती है ना, पुनश्च भूयाद भगवती अनंते रति प्रसंगस तदाश्रयेषु महस्सु याम्याम उपयामि सृष्टिम मैत्रीस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य। ये तो भागवत सुनने के पहले सभी भक्त आ गए, तो भक्तों के सामने प्रार्थना कर रहे परीक्षित महाराज के, मैं मरने वाला हूं और मुझे शाप मिला है, शाप के फल परिणाम से मेरी मृत्यु हो रही, तो संभावना शायद मेरी मुक्ति न हो, तो इसीलिए महत्सु याम याम उपयामि सृष्टिम, जितने बार मैं जन्म लू, याम याम जितके व्या माजा जन्म होना, सिर्फ तीन चीजें चाहिए, क्या चाहिए? तो कहते पुनश्च, पुनः पुनश्च भूयात, फिर से मेरा जन्म हो तो फिर तीन वस्तुएं मांगता हूं, क्या? भगवती अनंते रति, पहली चीज अनंत भगवान में, अनंत शेष में रति हो, मतलब भगवान में रति हो, भगवान के प्रति प्रेम। भगवती अनंते रति प्रसंग तद आश्रयेषु, और तद आश्रय और जो उन भगवान का आश्रय लिए उनका निरंतर संग प्राप्त हो, प्रगाढ़ संग। इसलिए प्रसंग शब्द आता है एकदम प्रगाढ़, जैसे एक तो दूध होता है और दूसरा रबड़ी होता है ना, तो दूध में अधिक आनंद है कि रबड़ी में? कुछ लोग दूध अच्छा लगता है, रबड़ी भी काफी अधिक उसमें मिठास होती है। तो एकदम प्रगाढ़ संग, नॉट जस्ट, जिसको अंग्रेजी में नॉट जस्ट सुपरफिशियल एसोसिएशन, ऊपरी ऊपरी नहीं है, केवल प्रगाढ़ रूप से जब संग किया जाता है, जिसको रूप गोस्वामी उपदेशामृत के चतुर्थ श्लोक में जिसकी व्याख्या की है, उसको प्रसंग कहते हैं। गुह्यम आख्याति पृच्छति। तो पहली बात उन्होंने मांगी कि मुझे भगवान के प्रति प्रेम हो, भगवान के प्रति रति हो, दूसरा भक्तों का निरंतर संग हो, और मैत्री अस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य, और सर्वत्र जितने जीव इस संसार के उनके प्रति मैत्री भाव। तो एकदम सरल भाषा में अगर कहा जाए चैतन्य महापुरुष शब्द में, नाम रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, यहां छाड़ी धर्म नाही शून्य सनातन। तो इसी को परीक्षित महाराज ने कहा, जो चैतन्य महाप्रभु कहे भगवान रति, भगवान के प्रति प्रेम मतलब नाम रुचि, प्रसंग आष्टद आश्रयेषु, जो भगवान का आश्रय उनके प्रति प्रसंग उनका संगति, वैष्णव सेवन, मैत्री सर्वत्र, सभी जीव के प्रति मैत्री मतलब जीव दया। तो लगभग वही कामना की है। आगे चलकर यदि आप इनका भी प्रसंग पढ़ते हैं, वृत्रासुर का, तो वहां पर भी चार श्लोकों में उन्होंने जो भागवत का सार दिया गया, कई भक्त वैसे इसको भी परिभाषा सूत्र कहते हैं, ये जो भागवत के चार श्लोक है ये भागवत का सार भी कहा गया। श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर ने केवल चार श्लोक कहे, जो उनकी प्रमुख प्रार्थना है, एकदम मरणासन अवस्था में है, जब उनके हाथ काट दिए गए, गर्दन काटी जा रही है, आपके गले में देखो गर्दन, आपके गर्दन पर कोई तलवार चलाए, उस समय आप कौन सी प्रार्थना कहेंगे? प्रार्थनाएं भूल जाएंगे सब, भजन पूरी एक तरफ रह जाएगा। कैसा वो भक्त होगा जिसके हाथ काट दिए गए हैं, ऐसा नहीं वहां को जो एनेस्थेशिया दिया था उनको, नहीं, पूरा हाथ काट दिया और गर्दन कट रही है, उस समय प्रार्थना कर रहे हैं उस अवस्था में। तो चार बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक, अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा शुदार्था प्रियम प्रिय विषितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष द्विदुक्षते त्वाम। इसके पहले अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदास होइतास्मि भूय मन समत स्मरे सुपतिर गुणांस्ते गुणित्वा कर्म करोतु काय। तो सबसे पहले कहा कि हे भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो क्या कीजिए, अहम हरे तव पादैक मूलम दास अनुदास भविताश्मि भूय, कि पुनः मुझे यदि जन्म हो मेरा, मैं असुरी शरीर में हो तो संभावना नहीं कि भगवत प्राप्ति शायद करूं, परंतु मेरा पुनः जन्म हो तो मुझे फिर से दास अनुदास आपके भक्तों के भक्तों का भक्त मुझे बनाइए, और मन स्मरे मन से मैं आपका स्मरण करूं, गृणीत वाक कर्म करो तुकाय, अपनी वाणी से आपकी महिमा को गाओ और अपने इंद्रियों से आपकी सेवा करो। और आगे वो कहते हैं, मम उत्तम श्लोक जनेषु सक्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन्मायया आत्मजया दार गृहेशु आसक्त चित्तस्य ननाथ भूय। तो पुनः वही शब्द है, अंतिम यह लाइन है मरने के पहले, मम उत्तम श्लोक जनेषु सक्यम, कि उत्तम श्लोक जन जो है, जो भगवत भक्त है, हरि जन है, उनके प्रति सखा भाव, उनके प्रति मित्रता हो। तो चाहे ये हो, फिर हर प्रसंग में आप देख लेंगे, जहां कहीं भी जितने भी प्रसंग देखे जाए, तो मेरे सामने जो जो आ रहा है वही मैं कह रहा हूं। तो यहां पर भी इसी को पुनः भक्ति मुहु प्रवतां त्वयि मे प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानां येनांजसोल गुण उर्वसनम भवादि नेश्ये भवत गुण कथामृतमान पानमत्तः। ध्रुव महाराज भी इसी बात को कहें, तो पहले परीक्षित को सुने, फिर आप रुद्रासुर का भाव सुने। ये ध्रुव महाराज जिनको भगवान दर्शन दे दिए, और इस इतिहास में लगभग देखा जाए तो ऐसे विशेष भक्तों या अद्वितीय इनकी भक्ति है कि 6 महीने भगवान प्रकट हुए। अधिकांश जितने भी भक्त, उन्होंने बहुत दीर्घ काल तक भगवत भजन किया तब भगवत प्राप्ति हुई। पर ध्रुव का एक अद्वितीय यह स्थान है कि ऐसे भजन किया, तो ध्रुव का प्रमुख जो गुण प्रदर्शित होता है दृढ़ निश्चय। इस दृढ़ निश्चय के साथ ऐसी तीव्रता के साथ भजन किया कि भगवान बाध्य हो जाए प्रकट होने के लिए। परंतु अंत भगवान आने के बाद अब क्या प्रार्थना की? तो वहां पर भक्ति मुहु प्रवताम त्वयि मे प्रसंग भूयाग अनंत महताम अमलाशयनाम। जो आपका आश्रय लिए है ऐसे भगवत भक्तों का निरंतर मुझे संग प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि दोनों अंतर क्या है, भगवान प्राप्त हो तो संभावना है कि हम भगवान से विमुख हो जाए। भगवान की उपस्थिति में भी ऐसे कई लीलाएं भी, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस धरातल पर अवतरित हुए, चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा किया तब उनके साथ में काल कृष्ण दास थे, जो प्रत्यक्ष भगवान के साथ में थे, भगवान की सन्निधि में थे, परंतु वे भगवान के संगति में रहकर भी विचलित हो गए। आप देखते हैं कौन थे, भट्ट हरि, जिन्होंने कुछ ऐसे प्रलोभन दिया, स्त्री आदि का प्रलोभन, और विचलित हो गए। भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य, भगवान की डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं, लगभग कैसे जैसे पुजारी सेवा करता है ना, विग्रह के साथ में जो रहते हैं, तो यह डायरेक्ट भगवान के साथ में थे, परंतु फिर भी विचलित हो गए। फिर चैतन्य महाप्रभु क्रोधित हुए कि अगली बार से इसको साथ में नहीं रखूंगा, फिर गए वृंदावन यात्रा के लिए। वृंदावन यात्रा जब गए तब किसको लेकर गए साथ में, क्या नाम उसका, बलभद्र भट्टाचार्य, जो भी एक पर्सनल असिस्टेंट लेके गए थे। और वृंदावन लेके गए तो वो भी विचलित हो गया। वृंदावन लेकर गए, वहां पर कुछ लोगों ने ऐसी चर्चा कर लगी, कृष्ण प्रकट हो गए, कृष्ण प्रकट हो गए, इस तरह से वो कहने लगे, तो संसारी लोगों की चर्चा से भी भ्रमित हो गया बलभद्र भट्टाचार्य भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य में। तो दो उदाहरण। तीसरा उदाहरण अर्जुन का, भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष सानिध्य है उन्हें, भगवान के रथ पर है, भगवान के साथ में, फिर भी मोहित हो गए। चौथा उदाहरण युधिष्ठिर महाराज का, भगवान उपदेश दे रहे, भगवान समझाने का प्रयास करे, फिर भी मोहित हो गए जब तक भीष्म पितामह ने नहीं कहा। और ऐसे कई उदाहरण, कई दृष्टांत है जिसमें देखते प्रत्यक्ष भगवान के साथ रहे फिर भी समझ में नहीं आया। और प्रमुख उदाहरण देखा जाए भागवत में उद्धव, भगवान के साथ रहे, भगवान का सानिध्य प्राप्त किए, भगवान की कृपा प्राप्त की, इतना ही नहीं भगवान उनकी सलाह लेते थे, ऐसे उद्धव। परंतु सही ज्ञान तब तक प्राप्त नहीं हुआ जब तक वो भगवान को छोड़कर गोपियों का आश्रय नहीं लिया। तुम देख रहे हैं कई भक्त है जो भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किए, परंतु भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन में भी संभावना है कि वो मोहित हो जाए, वह भ्रमित हो जाए। परंतु यदि वह भगवत भक्त के सानिध्य में रहे तो फिर भ्रमित होगा, ये चांस नहीं है। इसलिए यहां पर जैसे ये 6 स्कंद प्रारंभ में ना, नतता यगवान राजन पुयेत तप आदिवि यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निषेवया। सुखदेव गोस्वामी जब समस्त प्रायश्चित का वर्णन किए, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, साधना मार्ग, सभी मार्ग बताए, परंतु अंत तक है न तथा ही अघवान राजन पुयेत। अघवान, अघवान मतलब अघ किसको कहते हैं, पाप को, जैसे धनवान मतलब जिसके पास बहुत धन हो वह धनवान, शक्तिमान मतलब जिसके शक्ति हो, युक्तिमान मतलब इसका युक्ति हो, तो अघवान मतलब जिसका बहुत अधिक पाप का स्टॉक रहता है उसको अघवान कहते हैं। तो जिसका जीवन ही पाप से बना हुआ है, पूरा पापी नंबर एक कहते हैं जिसे। तो न तथा ही अघवान राजन पुएत, पुएत मतलब शुद्ध हो सकता है। तप आदि भी तपस्या से, ज्ञान से, कर्म से सब कुछ कर ले, उतना पवित्र नहीं होगा। कितना? यथा जिस प्रकार से कृष्ण अर्पित प्राण, कृष्ण को जिसने अपना प्राण अर्पित कर दिया, कृष्ण को सब कुछ अपना समर्पित कर चुका है, तत्पुरुष निशेवया, कृष्ण अर्पित प्राण पुरुष, जो कृष्ण को अपना प्राण अर्पित कर चुका है, ऐसे पुरुष की सेवा जितना पवित्र करती संसार में और कोई क्रिया नहीं कर सकती। इसीलिए सद्विजनायम लोक पंथाशेम कृतो वय सुशीला साधव यत्र नारायण परायण, कि जितना यह भगवत भक्त जो अपना मन जिसका पूर्ण तरह से भगवान में आविष्ट है, उनकी संगति जितना पवित्र करती है उतना प्रत्यक्ष भगवान की सन्निधि भी पवित्र करे, यह संभावना कम है। इसलिए ऐसे कई प्रार्थनाएं हम जो सुन रहे थे, वृत्रासुर हो या ध्रुव हो या प्रहलाद की प्रार्थना भी, आप हर प्रार्थना को यदि आप देखें तो लगभग सभी भक्तों की प्रार्थना बिल्कुल एक जैसी है, अंतर कहीं आता ही नहीं है। जैसे यहां पर भी वो कहते हैं, जब प्रहलाद के समक्ष भगवान प्रकट हुए तो वे कहते एवं जनम निपतितम प्रभवाहि कूपे कामाभिकाम मनु न प्रपतन प्रसंगात कृत्वात्मसा सुरशिना भगवन गृहीत सोहम कथम नु विसृजे तव भृत्य सेवा। हे भगवान नरसिंह, भगवान प्रकट हो गए उनके सामने और सब देवता प्रसन्न नहीं कर पाए। कोई ऐसी किसी भी जीव में सामर्थ्य नहीं था जो सामर्थ्य प्रहलाद में था, ना ब्रह्मा कर सके ना शिव कर सके, यहां तक लक्ष्मी जी विफल हो गई और वह श्रेय प्राप्त हुआ प्रहलाद को। भगवान नरसिंहदेव प्रसन्न हुए, भगवान नरसिंहदेव के मुखमंडल जो अत्यंत कोप से पूर्ण था, क्रोधित थे, एकदम प्रसन्न हो गए प्रहलाद के केवल नतमस्तक होने से। और वे प्रहलाद जब यहां पर भगवान के समक्ष एवं जन्म निपतितम प्रभव अहि कूपे, हे भगवान मैं इस संसार रूपी कुएं में गिर रहा हूं, भयंकर कुआ है, कामा भी काम मनु यह प्रपतन प्रसंगात, एक तो कुआ है और कुएं में भयंकर सर्प हो, तो कामनाएं वासनाएं भयंकर सर्प के समान निरंतर मुझे डस रही है। तो इस अवस्था में वास्तविक मुझ पर आप कृपा करना चाहते क्या कीजिए, सोहम कथम न विसुजे तव वृत्ति सेवाम, हे भगवान वास्तविक आपके भक्तों की सेवा छोड़कर और क्या मांगू मैं आपसे, आप मुझे देना ही चाहते हैं क्योंकि मुझे ऐसी वस्तु प्राप्त हुई जो संसार में किसी को प्राप्त नहीं हुई, प्रहलाद को जो प्राप्त हुई। यहां पर जैसे क्वाहम रज प्रभ ईशत तमो दिखेस्मिन जात सुरकल तवानुकंपा न ब्रह्मण न तो भवस्य नई रमाया यन्मिर्पिते शिरसि पद्मकर प्रसाद। क्योंकि प्रहलाद पहले विचार कर रहे थे कि मैंने किया क्या है, मैं असुर कुल में जन्म लिया तो कोई बहुत बड़ा पुण्य नहीं है, असुरी संगति मैंने की, असुरों के बीच में रहा तो कोई मेरा मतलब, मैं अपना अगर विचार करूं योग्यता विचारे किछु नाही पाय, अगर ये लाइन यदि आप अपने जीवन में अगर साक्षात्कार कर पाए तब साधु संगति का फल प्रारंभ होता है वहां, कि योग्यता विचारे किछु नाही पाय, कि मैं अपने निज योग्यता का विचार करूं आध्यात्मिक जीवन में तो वास्तव कोई योग्यता है ही नहीं मेरी। तोमार करुणा सार, आपकी करुणा हे साधु हे गुरु, आपकी करुणा ही सार है। तो यहां भी प्रहलाद जो कह रहे हैं कि क्वाहम रज प्रभव ईश तमो, मैं तमो तामसिक जीव रजोगुण का प्रभाव जिसके जीवन में रजो और तमोगुण अधिक जात असुर कुले, तो असुर कुल में जन्म लिया तमोगुण रजोगुण जीवन में जी रहा हूं, परंतु मुझे ऐसी वस्तु प्राप्त हुई न ब्रह्मण जो ब्रह्मा को नहीं दिया आपने, न भव न तु भवस्य शिव जी को भी प्राप्त नहीं हुआ, अच्छा ब्रह्मा को भी शिव को नहीं, न तू रमाया न वही रमाया, रमा मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं ब्रह्मा ने शिव ने उनको भी प्राप्त नहीं किया। शिरसि पद्म कर प्रसाद, शिरसि मेरे सिर के ऊपर आपने अपने कर कल कर कमल रूपी प्रसाद को रखा। ब्रह्मा जी जो भगवान का दर्शन किया, भगवान शेखहैंड के ये वर्णन है, परंतु भगवान ने कभी हाथ रखा है सिर पर? शिव जी के सिर पर कभी भगवान हाथ रखे? अच्छा लक्ष्मी जी के सिर पर कभी हाथ रखे? किसी के सिर पर कभी हाथ भगवान प्रत्यक्ष नहीं रखे जितना प्रहलाद के रखे। तो ऊपर अपना कैलकुलेशन कर रहे कि ऐसी कौन सी क्रिया है जिसके फल में मुझे यह प्राप्त हुआ है। तो अंततः तो घुमा फिरा कि उन्होंने कहा कि और कुछ नहीं है, केवल यही नैशा परावरमति भवतो ननु स्याजन जंतोर यथा आत्मसुहृदो जगतस्तथापि संसेवया स्योतरुत्तरैव ते प्रसाद सेवानुरूप मुदयो न परावरत्वम्। कि वास्तविक इस संसार में यह जो आपके साधु की जो संगति प्राप्त हुई, आपके भगवत भक्तों की जो संगति प्राप्त हुई, उसका फल है कि आपके कर कल उम्र जो प्राप्त हुए। तो सार में देखा जाए तो यही न लगे मुक्ति धन संपदा संत संगति दे सदा हे चिदान देगा देवा तुझा विसरना। तो उसमें भी अंत तुकाराम महाराज भी इसी बात को कहे, न लगे मुक्ति भी नहीं चाहिए, धन भी नहीं चाहिए, संपदा भी नहीं चाहिए। हम मुक्ति के चक्कर में पड़े हैं, परंतु मुक्ति भी नहीं चाहिए। एक बार मुझे धन तो नहीं चाहिए, संपदा नहीं चाहिए। ये कब तुच्छ लगेगा? जब साधु संगति कितनी महान है यह जब समझ में आ जाए, ये कितने भाग्य है। इसलिए यहां शब्द पहला जो है इसी पर मैं विचार कर रहा था, तो इसलिए मैं इतना सब कुछ विश्लेषण कर दिया, जो कहना था तो रह गया कि दिष्ट्या शब्द है मराठी में, मतलब दिष्ट बहुत बड़ा भाग्य है मेरा, बहु भाग्य, जिसको नारद मुनि भी कहे पद्म पुराण में जो वर्णन आता है, यद दर्शनम च विनहन्ति अशुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भव दुख दवार्दितानां निशेष शेख मुख गीत कथैक पाना प्रेम प्रकाश कृते शरणं गतोऽस्मि। नारद मुनि चार कुमारों की शरण जब जाते तो वे कहते यद दर्शनम च, जिनके दर्शन मात्र से ही विनिहंति अशुभानि सद्य, सद्य इंस्टेंट, जिनके दर्शन से भयानक अमंगल अशुभ नष्ट हो जाता है, जिसको भक्तिवन ठाकुर के शब्दों में क्या कहते हैं, भक्तिवन ठाकुर नरोत्तम दास बोले, जहां र निकट गेले पाप दूरे जाए, जिनके निकट आने से ही भगवत संगति और भगवत भक्त संगति में क्या अंतर है? भगवत भगवत संगति पाप का नाश करती है, भगवत भक्त की संगति पाप वृत्ति का नाश कर देती है। भगवान का नाम उच्चारण करते पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु वासना जल्दी आती नहीं है। परंतु उसी भगवान नाम को जब एक भगवत भक्त का आश्रय लेके जब उच्चारण किया जाता है तो पाप की वृत्ति भी नष्ट हो जाती है। तो इसलिए यहां पर कह रहे यद दर्शनम च विनिहन्ति अशुभानि सद्य श्रेय तनोति भव दुख दवार्दिता नाम। और इस संसार का जो भव दुख है, इस संसार का जो क्लेश है, उससे जीव मुक्त होता है, अमंगल का नाश होता है, निशेष निशेष शेष मुख गीत कथा कवाना, जब उन्होंने भगवत भक्तों के मुख से कथा का श्रवण किया जाता है। इसलिए यहां पर कहते भाग्योदय न बहु जन्म समर्जिते न सत्संगम पुरुषम च लभते, सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांध अंधकार नाशम विधाय ही तदो उदयते विवेक। तो क्या कहे यहां पर नारद मुनि कह रहे चार कुमार को देखकर, हालांकि देखा जाए तो रिश्ते में तो भाई है ना, फैमिली रिलेशन है, वैसे देखा जाए दोनों ब्रह्मा के पुत्र हैं, परंतु फिर भी यहां पे भाईगिरी नहीं बता रहे कि तुम तो मेरे भाई हो। अरे आप बड़े संत महात्मा, भाग्योदय बहु जन्म समझना, अनेक अनेक जन्मों का बहुत जब पुण्य अर्जित हो तब तो क्या होता है? तो भक्तिवन ठाकुर जय धर्म कहते हैं अनेक जन्मों का पुण्य जब आपका हो तो उसके फलस्वरूप आपकी अज्ञात सुकृति होती है। अज्ञात सुकृति मतलब अनजाने में आप भक्तों के संपर्क में आ जाते हैं, अनजाने में भक्ति की क्रियाएं आप करने लगते हैं। जैसे आप रास्ते चल रहे, अचानक वहां पे हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, वैदुर्वी चरणपुर के मुख से आपने हरिनाम संकीर्तन सुन लिया। आप कोई भक्त नहीं है, आप कोई भक्ति करते नहीं है, परंतु आपके कान में नाम प्रवेश कर गया, तो ये श्रवण भक्ति नहीं कहलाएंगे। ये आपने नाम सुना, परंतु भगवान के प्रति भक्ति भाव नहीं, कुछ नहीं है, आपने सिर्फ अनजाने में नाम सुन लिया, तो अज्ञात सुकृति हो गई। फिर आप आगे चल रहे थे तो किसी भक्त ने आपके हाथ में प्रसाद दे दिया, तो आपने खा लिया, तो प्रसाद ले लिया। तो बिना ज्ञान के जो भक्ति की क्रियाएं जो करते हैं उसको कहते हैं अज्ञात सुकृति। और ऐसे कई जन्मों में जो अज्ञात सुकृति का बहुत ज्यादा स्टॉक आपका जमा हो जाए तो क्या होता है, उस अज्ञात सुकृति से फिर जन्म होता है किसका, श्रद्धा का जन्म होता है। कौन सी श्रद्धा का जन्म होता है, उस श्रद्धा का जन्म होता है जिसमें आपके मन में साधु के प्रति दृढ़ निष्ठा आ जाती है। यदि मुझे भगवान को प्राप्त करना है तो साधु के चरणों में बैठकर साधु की तद क्या कहते हैं, तद दया पात्रता कहा जाता है उसे, कि उसके साधु की कृपा मुझे प्राप्त करनी, इस श्रद्धा के साथ उनके चरणों में बैठकर जब भगवान नाम या भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, तो तब श्रद्धा, श्रद्धा शब्द का अर्थ है कि साधु की वाणी में श्रद्धा, इसको श्रद्धा कहा गया। तो साधु की वाणी में जब श्रद्धा आ जाती है उसे गुरुमुख पद्म वाक्य चीते देखो रहे कि यह जीवन का प्राणाधार है गुरु की वाणी, यह जब निष्ठा आ जाती है उसको श्रद्धा कहते हैं। तो ऐसी जब श्रद्धा कब होती है तो कहे बहु जन्म समर्जित है ना भाग्योदय ना, बहुत जन्मों में जब आप बहुत अधिक अज्ञात सुकृति करेंगे तब यह इस तरह की श्रद्धा आती है, जब आपको यह संगति प्राप्त हो। ऐसी संगति क्या करती है, अज्ञान हेतु कृत मोह मद अंधकार नाशम, तीन चीजें ना, अज्ञान के कारण, अज्ञान से तीन चीजें बनी, अज्ञान कृत, अज्ञान का प्रोडक्शन है क्या है, मोह मद अंधकार। अज्ञान के कारण मोह मद और अंधकार ये तीन जो बने हैं, मोह इस संसार का है, मद है हमें अभिमान है, और अंधकार में जो जीवन है इसका नाश होता है, और इसका जब नाश होता है तो फिर किसका जन्म होता है, तद उदयते विवेक, तब विवेक का उदय होता है। विवेक मतलब वास्तविक सत और असत में भेद बुद्धि, मुझे भगवत भक्ति करनी है, भगवत भजन करना है, और भगवत भजन छोड़कर अन्य क्रियाओं को नहीं करना है, यह जो दृढ़ संकल्प। अभी हम ज्ञान है हमारे पास कि भगवत भक्ति करना और ये क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, परंतु अपने आप को रोक नहीं पाते उन असत क्रियाओं से, परंतु सत्संगति वहां शक्ति प्रदान करती है। तो इसीलिए यहां पर जो शब्द कहा गया है, तो मैं इसी शब्द पर ही कह रहा हूं, बाकी तो रह गया, दिष्ट्या मे भगवान दृष्ट, ये बहुत बड़ा भाग्य है। क्या मिल गया क्या हमको ये, हम कभी इसको कहते हैं ना अति परिचयात अवज्ञा, बहुत आसानी से जो चीज मिल जाए तो बहुत सस्ता हो जाता है। हम कई बार कुछ स्थानों पर ऐसा है, कभी अन्य स्थानों पर जहां नियमित मंदिर नहीं है, जैसे कभी अकोला जाते हैं, कभी खामगांव जाते हैं, ऐसे अलग स्थान पर जाते हैं जहां नियमित उनको मंदिर नहीं, नियमित भक्तों का संग नहीं मिलता है, वहां पर देखते, हमने देखा है प्रत्यक्ष, जब भक्त आते तो ऐसे उनका मतलब जिस तरह से भागवत के दशम स्कंद में वर्णन किया गया ना, जब मेघ के बादल प्रकट होते तो मयूर जैसे नृत्य करता है। अब देखिए मयूर कैसे नृत्य करता है, पंख फैलाकर, जब पहली मेघ जब आने लगता है, जब वर्षा काल आता है, तब मयूर एकदम प्रसन्न हो जाता है। तो बताया जाता है इस संसार में साधु का दर्शन करके इस संसार का जीव एक भक्त वैसे प्रसन्न होता है। अब भक्त को देखकर उसे नाचते क्या, एकदम पंख फैलाकर, उल्टा हमारे पंख भी सिकुड़ जाते हैं, हम मतलब उतना प्रफुल्लित नहीं होते जैसा मयूर है। तो भगवत भक्त को देखकर, हम देखे कई बार कभी ऐसा स्थान में जाते जहां भक्तों की संगति नहीं मिलती, उन्हें इसकी कीमत पता चलती, एक बार प्रभु जी मिलता नहीं हमको संग, तो किंचित मात्र लव मात्र संग के लिए वो तरस जाते हैं, परंतु बहुत सहजता से जब वो हमारे समीप आ जाता है तो फिर क्या होता है, फिर उसके प्रति दोष बुद्धि आ जाती है। तो मतलब फिर क्या होता है, जैसे मैं उस दिन रविवार कह रहा था कि सत्संगति जब साधु देना चाहे तो सबसे अधिक आवश्यक आप लेना चाहते हैं क्या, क्योंकि आप मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं सभी वक्त, तो आप जानते हैं मोबाइल में अगर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा कब ट्रांसफर होता है, जब ब्लूटूथ से ट्रांसफर करते हैं ना, बोथ द डिवाइसेस शुड बी पेयर्ड कहते हैं ना, पेयरिंग होता है ना, और जब तक पेयरिंग ना हो दो डिवाइस का तब तक वो डाटा ट्रांसफर होगा ही नहीं। अब मैं देना चाहता हूं डाटा, मैं सूरज प्रभु ने ब्लूटूथ ऑन ही नहीं किया है, तो उनका ब्लूटूथ जब तक ऑन ना हो तब तक मेरा डाटा जाएंगे ही नहीं। तो एक मतलब देने का भाव होता है, दूसरे का लेने का भाव, जिसको गीता में कहता तद्विधि प्रणिपात न परिप्रश्न सेवा, अति दीन भाव प्रणिपात भाव। उस भावना से जब व्यक्ति अपना हाथ सामने एकदम भिक्षु की तरह पसारता है तब वह सत्संगति का लाभ प्राप्त करता है, तब परिवर्तन आते हैं। ऐसे हम देखे कई कई भक्तों को कि किंचित मात्र संगति की, जितने यहां पर आप प्रहलाद की कथा, प्रहलाद को कितना संग मिला, बहुत थोड़ा मां के गर्भ में। अभी 3 दिन पहले श्री गोविंद प्रभु कथा कह रहे थे, प्रभुपाद ने कितना संग किया गुरु का, जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है उनका आप कैलकुलेशन कीजिए कितने भागवतम क्लास अटेंड किया, प्रहलाद महाराज ने कितने किए होंगे, बाहर तो किया नहीं, मां के पेट में बैठ के भागवतम क्लास अटेंड किया कुछ दिन। ध्रुव ने कितनी संगति की, एक बार इसे एक ही मीटिंग हुई थी ना नारद से, प्रचे हरियस्व दक्ष प्रजापति के पुत्र थे, नारद मुनि उनसे मिलने आए, कितना समय उन्होंने नारद मुनि का संगति की, नारद मुनि ने सिर्फ 9 प्रश्न पूछे और 10,000 जो पुत्र थे दक्ष प्रजापति, 10,000 पुत्रों ने एक साथ संन्यास लिया, 9 लाइन सुनने के बाद संन्यास लिया। हम तो कितनी लाइन बोल दिए पौन घंटे में हम नारद मुनि नहीं हो, नारद मुनि का कमाल था ये भी एक है। तो देने वाले का भी होता है, परंतु लेने वाले का भी मैं कह रहा हूं यहां पर, कि लेने वाला जो व्यक्ति है किंचित मात्र संग भी लिए जिन जिन भक्तों ने, उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। परंतु हम तो इतना प्रचुर मात्रा में मिल रहे हैं, तो हमें वास्तविक परीक्षण करना चाहिए, सत्संगति कर रहे जिसकी इतनी महिमा गाई जाती है पुनः पुनः, दृष्टिया अदृष्ट या अकृतात्मनाम, जो अकृत आत्मनाम है जिनका मन इंद्रिय संयम नहीं है ऐसे दिखाई नहीं देते, भगवत भक्त की संगति इतनी सहजता से मिलती नहीं है। इसीलिए भागवत में कहा गया दुर्लभ मानुषम देह देहिनाशन भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शन, कि मानव देह अत्यंत दुर्लभ है, दुर्लभ ही नहीं क्षण भंगुर है, परंतु तत्र अपि दुर्लभम, जितना मानव शरीर दुर्लभ कहा गया उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। 84 लाख यूनियों में कितने बार आप भटकोगे भटकोगे फिर मानव शरीर मिलेगा, परंतु मानव शरीर में भी कई जन्मों तक भटकोगे आप, उसके बाद तत्रापि दुर्लभ मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शन, जो वैकुंठ प्रिय है भगवत भक्त है जो भगवान को प्रिय है उनका संगति मिलना बहुत कठिन है, बहुत अधिक दुर्लभ है। इसीलिए उसकी महिमा को यहां पर स्वयं मुनु करे दृष्टिया दृष्टिया ही मैं भगवान दृष्टो अदृष्ट अदृष्ट मतलब दिखते नहीं है। तो मैं पहली लाइन पे बोला, दूसरी लाइन तो रहेगी, तो दूसरी लाइन पर हम कल चर्चा करें। किसी को टीका टिप्पणी कुछ
समय सत्संग के व्यतिरिक्त बीतता है तो अक्सर अवरक्त और सत्संग हमने उस समय हमारी चेतना कैसी रखनी चाहिए, हम लोगों ने उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए।
कुर्म ब्राह्मण का उपदेश जो मैं रविवार को बताया था ना, वही गृहस्थों के लिए ये दो ही क्रियाएं बताएगी वहां पर स्पष्ट रूप से। जब उन्होंने कहा कि ना बाधित क्या है, ये जो लिखा गया ना इधर एक मिनट, मोर भाग्य सीमा नाई आय कहो न आज ही मोर श्लाघ्य हिला जन्म कुल धना। वे कहते कि आज मेरे भाग्य की सीमा नहीं है, आज आप मेरे घर में आए क्या सीमा कही जाए कि साक्षात भगवान प्रकट हुए, आज मेरा जो जन्म है मेरा कुल है सब कुछ पवित्र हो गया। कृपा कर प्रभु मोरे याय तुम्हार संगे सहित ना पारी दुख विषय रहे। कृपा करके हे महाप्रभु आप क्या कीजिए, अब आपका संग मुझे एक बार मिल गया, अब मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। क्यों? सहित ना पारी दुख विषय तरंग, जैसे आप चले जाएंगे तो क्या होगा, इस संसार के विषय की तरंगे मुझे डुबा देंगी। ये संसार जो है, संसार को समुद्र कहा जाता है, और संसार में जो विषय वासना है, जो कामना है, जो इच्छा है, वो तरंगों के समान है। तो हमारा अनुभव, आप जब समुद्र में स्नान करते हैं ना, तो क्या होता है, जो समुद्र की लहरें होती हैं उनके दो प्रमुख गुण होते हैं कि वो मारती बहुत जोर से है। मार खाइए कभी, वो जो लाटा मंटर बहुत जोर से लगती है, और दूसरा एकदम खींचती है अंदर। तो हर इच्छा के ये दो परिणाम होते हैं, आप जितनी इच्छा कर रहे थे उसके दो परिणाम होते हैं, पड़ेंगे जरूर। जितना सुख जो भी इच्छा करोगे, हर इच्छा आपको झापड़ मारेंगी, देखना। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी नहीं, अनुभव आएंगे हर इच्छा का। जो जो इच्छा आप करो तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम मिलता ही, तो झापड़ मिलती है। दूसरा, और एक इच्छा 10 इच्छाओं को पैदा करती है और अंदर खींचती है जितनी कामना है। तो इतना भयानक ये संसार का विषय तरंगे, सहिते ना पारी, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। तो फिर श्री चैतन्य महाप्रभु बस दो क्रिया करो, प्रभु कहे ऐसे बात कबू ना कही, ऐसा बिल्कुल बात नहीं करना, मैं घर छोड़ के मैं जा रहा हूं, मैं मंदिर में भर्ती हो जाऊंगा, आवश्यकता नहीं है। यदि आप ये दो क्रिया कर सकते हैं तो आप मंदिर आने की आवश्यकता नहीं है, ना कर पाओ तो फिर स्वागत है, यहां तो आश्रम बहुत बड़ा बनाया है, आप रह सकते हैं। दो चीज अगर आप कर सकते हैं तो क्या करना है, प्रभु कहे ऐसे बात कबू ना कही, गृह रही घरिश्राम, अपने घर में रहिए, परंतु दो चीज, गृह रही कृष्ण नाम निरंतर लईबो, ये पहली चीज। एक दैनंद जीवन में अभ्यास को प्रारंभ जब किया जाए, निरंतर अभ्यास किया जाए, तो व्यवहारिक रूप से देखा जाए कि बोलना आसान होता नहीं है। तो वहां पर कहा गया कि निरंतर नाम बहुत कठिन है, एकदम जहर पीने के समान है, क्योंकि वो नाम ज्यादा आप जब करते हैं ना तो क्या होता है, इसको कहते थॉरो प्यूरिफिकेशन, एकदम शुद्धिकरण बहुत होता है। तो हर चीज आप कर सकते हैं, पूरा दिन आपको बोलो कि आप चम्मच हिलाते रहिए, आप कुकिंग कीजिए, कुकिंग पूरा दिन हो जाए, एक बार का कीर्तन पूरा दिन कर लेंगे, और आपको माला लेकर बोलो कि बैठो और जप करो, पूरा दिन क्या, एक 10 मिनट में ही लोग सब पूरा अस्त व्यस्त हिलने लगते हैं, आधे घंटे में तो तांडव हो जाता है, 2 घंटे बाद तो फिर समाधि लग जाती है। पर निरंतर कहा जाए तो होता ही नहीं नाम, क्यों नहीं होता है, क्योंकि विषय बहुत अधिक भरे हुए हैं, और सब विषय को काट डालता है नाम, जितने विषय वासना कट जाती है यदि निरंतर नाम हो तो। परंतु वो माया के विरुद्ध एकदम हमला है, तो माया कुछ भी करने का आपको कहेंगे, परंतु नाम मत लेना, सब क्रिया करने दो, परंतु इसका मुंह चलना नहीं चाहिए, मुंह से नाम नहीं होना चाहिए। और आप देखेंगे तुरंत जीभ रुक जाती है, जैसे आप माला छोड़ते हैं रुक जाती है, फिर आप प्रयास कीजिए कुछ समय बाद, परंतु संसार की वासना ऐसी नाम, तो नाम निरंतर तब तक नहीं हो सकता है जब तक कोई नाम निष्ठ संत की संगति ना हो। जिसकी नाम में निष्ठा हो गई है, जो नाम में एकदम तल्लीन हो गया है, जैसे बेवड़े के साथ रह गया बेवड़ा बनेंगे ना, तो निरंतर नाम जो ले उसकी संगति जब हो, उसकी कृपा जब हो जाए, तो कल का श्लोक अगला श्लोक में कृपा की वर्णन किया गया है, ऐसी भक्त की जब संगति की जाती है, इसलिए हम निरंतर जब भी जब करते हैं तो तुलसी महारानी के समक्ष बैठते हैं, श्रील प्रभुपाद के समक्ष बैठते हैं, आचार्यों का आह्वान किया जाता है, श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ऐश्वर्य गोस्वामी करी चरण वंदन, जहां हिते विघ्नाश अभिष्ट पूर्ण, षड गोस्वामियों का चिंतन किया जाए, नाम जप के समय आप इन समस्त आचार्यों का स्मरण करें, और केवल ये भावना अगर करें तो आप देखेंगे आपका नाम निरंतर चलना शुरू हो जाता है। ये व्यवहारिक अनुभव है, आप नाम जप कर रहे हैं जो आप सदैव ये भावना रहती है कि मैं ध्यानपूर्वक सुनो ध्यानपूर्वक सुनो, अनुभव होता है कि मन भटक जाता है। तो क्या करना है, यह भावना मन में रहे कि मैं शुद्ध भक्तों की संगति में हूं, सोचने में क्या जा रहा है, नारद मुनि की कथा सुनिए, आज मैं नारद मुनि की संगति में बैठा हूं, नारद मुनि के चरणों का आश्रय लेके नारद मुनि के संगति में नाम जप कर रहा हूं, श्रील प्रभुपाद की संगति में, हरिदास ठाकुर की संगति में। आप केवल ये भावना करेंगे तो आपका मन भटकेंगे नहीं, वैसे तो मन भटकने वाला है, आप अकेले बैठ के जप करो तो आप जितना प्रयास करेंगे तो एक कठिन होता है और भटकता है, नींद आती है, लय विक्षेप औदासीन्य तीनों दोष आते हैं, परंतु एक शुद्ध भक्त का स्मरण करके आप नाम उच्चारण करेंगे तो तीनों दोष खत्म होते हैं, उदासीनता चली जाती है। कोई भक्त तुरंत बोलते, प्रभु जी जब से हम इस तरह से जप करने लगे रुचि बढ़ गई, हमारी इंटरेस्ट आ रहा है। पहले ऐसा था कि 10 माला करे कब खत्म होंगी माला, अब ऐसा होता कि और एक्स्ट्रा करूं क्या और नींद तो तुरंत चली जाती है कई भक्तों। तो निरंतर नाम के लिए कहा जाता है कि नाम को एक नामनिष्ठ संत के, जो नाम की उपासना करते, नाम की आराधना करते हैं, नाम अधिक जप करते हैं, नाम का प्रचार करते हैं, ऐसे भक्तों की संगति में नाम जप किया जाए तो फल मिलता है। और जिस तरह से भगवान सर्वत्र है, आप मन में स्मरण करें कृष्ण का, तो जहां कृष्ण का स्मरण करें कृष्ण उपस्थित है कि नहीं। तो आप अपने ऑफिस में बैठे, ऑफिस में बैठ के आपने श्रील प्रभुपाद का स्मरण किया, तो प्रभुपाद आपके साथ है या नहीं, है या नहीं, है ना। आपने वहां बैठकर यदि षड गोस्वामी का स्मरण किया तो है या नहीं। तो यह शुद्ध भक्त भी जिस तरह से भगवान सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, जो भगवान के नित्य मुक्त परिकर है, यह भी भगवान की तरह सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। हम जहां कहीं भी अगर स्मरण करें, गुरु महाराज का आप स्मरण करते हैं, आपके गुरु का स्मरण करते हैं, तो गुरु का स्मरण करते हैं तो गुरु आपके साथ है या नहीं। श्रील प्रभुपाद मायापुर में जब जा रहे थे तो श्रील प्रभुपाद मायापुर में प्रवेश किए, भक्तिजान सरस्वती की समाधि आप देखते हैं, और प्रभुपाद वहां उतरे नहीं, प्रभुपाद डायरेक्ट इस्कॉन मंदिर चले गए। तो वहां पर जो गौड़ीय मठ के जो वैष्णव थे वे प्रभुपाद की आलोचना करें कि कैसा सन्यासी है, अपने गुरु के दर्शन के लिए भी नहीं आया। तो कुछ शिष्य जाके बताया, प्रभुपाद आपके बारे में चर्चा हो रही है, वो कह रहे गुरु का दर्शन के लिए आया। बोले मूर्ख है वो लोग, इस जीवन में कभी ऐसा क्षण था नहीं कि मैं अपने गुरु से अलग हुआ, मेरे गुरु महाराज हमेशा मेरे साथ हैं। ये लोग सोचते कि भाई मैं दर्शन करूंगा तो ही गुरु मुझे मिलेंगे, परंतु मेरे गुरु हमेशा मेरे साथ थे। तो इसलिए हम जब नाम जप कर रहे, जो भक्ति क्रियाएं कर रहे, उसमें भी उनका स्मरण करके यदि वो क्रिया करे, स्मरण करते हुए क्रिया करें। कुछ लोग प्रभु जी दो क्रिया कैसे करेंगे, हमने तो अभी तक सीखा कि जप करते सिर्फ नाम सुनो, और आप बोल रहे हो हरिदास ठाकुर को भी स्मरण करो, तो प्रॉब्लम क्या, हरिदास ठाकुर के साथ में बैठ के जप करने आपको तकलीफ हो रही है या षड गोस्वामी के साथ बैठकर। परंतु इसका चमत्कारिक जो अनुभव भक्तों के जीवन में देखा गया वो बहुत विशेष है। तो ये पहला बोला, और दूसरा फिर क्या कहा, व्यवहार जो प्रभु जी कह रहे हैं कि अब नाम तो जप कर रहे, परंतु नाम जब जब रुक जाता है कुछ व्यवहार करना पड़ता है। पति पत्नी के साथ व्यवहार करते हैं, ऑफिस में आप व्यवहार करते हैं, तो हर व्यक्ति के साथ आपको कुछ आदान प्रदान तो होता है, उस समय क्या किया जाए। तो इसलिए दूसरी लाइन बताई, पहली कही गृह रहे कृष्णाम निरंतर लई वो, जब व्यवहार नहीं कर रहे तो ये क्रिया करो, और व्यवहार करते तब फिर दूसरी लाइन, जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश आमार आज्ञा गुरु हैया तारे देश। व्यवहार में एक नियम बना ले कि जिससे भी मिलते मैं कृष्ण के बारे में बोलूंगा जरूर, यह एक भावना बना दे कि हम जिससे मिलते यह एक नियमित, एक तो हरे कृष्णा बोलना, हाय हेलो तो छोड़ दिया, हरे कृष्णा बोले और कुछ ना कुछ कृष्ण के विषय में बतलाएं। भगवद गीता सदैव साथ में रखें, जिस किसी मिलते भगवद गीता बताएं, जिस किसी मिलते थोड़ा नाम के बारे में बताएं, जिस किसी मिलते मंदिर के बारे में बताएं, सत्संग के बारे में आमंत्रित करें। यह एक नियम बनना चाहिए कि हर किसी व्यक्ति से मिलते यदि यज्ञ अर्थात कर्मण्यत्र लोको यम कर्म बंधना, आपकी जो क्रिया कृष्ण से जुड़ी नहीं है वह क्रिया आपके बंधन का कारण है, तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक। तो आपका जो व्यवहार यदि कृष्ण से संबंधित न हो तो व्यवहार आपका बंधन का कारण बन जाएगा। तो हर व्यवहार में एक नियम, समस्या है कि हमको शर्म आती है क्योंकि हम डबल रोल खेलते हैं ना, एक होता है भक्त की भूमिका होती है, और फिर कुछ ऐसा भी समय जब हम भक्त के रूप में नहीं दिखना चाहिए, हम हरे कृष्ण वाले नहीं है, फिर तिलक भी नहीं, कंठी माला भी छुपा देते हैं, जब किसी शादी में चले जाते हैं, विवाह में जाते फिर तिलक क्यों लगाए, लोगों के सामने दिखा नहीं जाते, तो हम डबल रोल का गेम जो खेलते तो वो समझ जाते। सदैव यदि आप अपने आपको भक्त के रूप में प्रस्तुत करेंगे, आप तिलक लगाते, आप कंठी पहनते हैं, मुझे अनुभव लगभग 20 वर्ष पूर्व जब मैं कॉलेज में था उस समय मुझे स्मरण है कि मैं जो कॉलेज जाता था वहां पर तो मैं तिलक लगाता था, तिलक रहता था, कंठी भी रहती थी, यहां तक कि शिखा भी थी, और टी शर्ट रहता था बहुत बड़ा, उसमें चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी लिखा था। और कॉलेज में जितने लड़के थे इतने हंसते थे, अरे आ गया ये पंडित जी, आ गए पंडित जी, आ गए वो शेंडी वाले पंडित जी, आ गए, काफी कुछ कहते थे वो मेरे मित्र, परंतु मैं इतना ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि कॉलेज में क्लासरूम में प्रवेश करो तो हमारे लेक्चरर भी बोलते थे, अरे आ गया वो हरे कृष्ण वाला, आ गया, इस तरह से बोलते थे, काफी प्रयास होता था। परंतु बहुत विचार नहीं किया। परंतु एक बात देखी कि कई बार विषय से कॉलेज में देखते कि जिस तरह की असत संगति होती है, लड़के लड़के के बीच में जो व्यवहार होते हैं, जिस तरह की बातचीत होती है। अब मैं जब रहता था तो मैं जैसे वो जो भी हमारे जो मित्र होते थे कॉलेज के जो सहपाठी होते उनके बीच में जाता था, जैसे मैं पहुंच गया था ये आ गया ना, इसके सामने बात मत करो, इसके सामने ये बात मत करनी चाहिए, ये अच्छा लड़का है, ये अच्छा भक्त है ना, ये तो ये भगवान का पूजा पाठ करता है, इसके सामने ये बात है। मतलब आप यदि अपने आप को भक्त के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो असत संगति आपसे दूर भागती है। लोग असत चर्चा करेंगे, आपके तिलक रहेगा तो इसके सामने बात करेंगे क्या? शुद्ध प्रिय कॉलेज में कोई बात करने की जरूरत करेंगे? गलत, क्योंकि तिलक दिखता है, कंठी दिखती है। तो इसलिए श्री भक्तिनो ठाकुर कहे कि कृष्ण भावना का प्रचार कब होगा, जब इस भारत का जो क्या न्यायाधीश है वह भी कंठी माला तिलक धारण करे, बेड़ बैग। तो कभी कभी हमको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, हम छोटा सा तिलक लगाते, तिलक भी तुलसी भी इतनी एकदम बिंदी जैसी लगाते हैं कुछ लोग, और तिलक की लाइन भी इतनी पतली होती है कि सिर्फ आपको ही दिखाई दे और किसी को दिखाई भी ना दे, क्योंकि दिखना नहीं चाहिए ना, नहीं एकदम डार्क होना चाहिए। हमारे मैं जब नागपुर में रहता था एकलव्य को, वो तिलक एकदम इतना मोटा वो लगाते थे कि एकदम प्रोमिनेंट दिखाई देता है। कई भक्तों को देखे आप, चाहे गौर गोपाल हुए, राधेश्याम हुए, कई भक्त हम देखते हैं। तो इसमें संकोच नहीं करना चाहिए भक्ति के लिए। तो यह अपने आप को यदि आप भक्त के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो असत संगति का कुछ परसेंटेज कम हो जाएगा। और दूसरा यह नियम यदि बनाया जाए कि जहां कहीं भी जो भी व्यवहार कर रहे उस व्यवहार में कृष्ण को लेकर आए, तो फिर असत संगति का परसेंटेज कम होने लगेगा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।